कन्या संगम को दो भागों में दिखाया गया है, एक नीचे का भाग और एक ऊपर भाग। नीचे का जो भाग दिखाया गया है पंडित के अंत, उसमें लिखा हुआ है 40 वर्ष का संगम, पुराने पूरी के चित्र में साफ लिखा हुआ है 40 वर्ष का संगम। जबकि संगम एक ही आए बताइए 52 इंद्रियों में 100 साल, इससे साबित हो गया कि सन 36 से लेकर के और 76 तक का पीरियड यहाँ दिखाया गया, और 76 के बाद का जितना पीरियड है वो संगम में इधर ऊपर दिखाया गया। हाँ 40 वर्ष यहाँ लिखा हुआ है, 40 जोड़ दिए 36 में, 76 आया। 76 में ये 40 वर्ष के अंदर ब्रह्मा द्वारा जो स्थापना का कार्य संपन्न होना था वो कार्य संपन्न हो गया। प्रतिदी आत्माओं की शूटिंग का, तो प्रतिदी आत्माओं की शूटिंग का जो कार्य संपन्न होना था वो हुआ, और उसकी 4 स्टेजेस भी हुई, कटोपधाम कटो सामान्य रजो और तमो। तो रजो और तमो की जो शूटिंग हुई है वो यहाँ तेरी चित्र में भी यहाँ से लेकर के यहाँ तक रावण राज्य के रूप में दिखाई गई। तो 40 वर्ष का संगम ये पूरा हुआ और 60 वर्ष का ऊपर दिखाया गया 75 से लेकर के और 2036 तक। तो 76 में जब ब्रह्मा द्वारा प्रतिदिन देवतावन की आत्माओं की शूटिंग का कार्य संपन्न हो जाता है, तो उसके बाद विनाश काले विपरीत बुद्धि की विनश्यंती हो जाती है, और विनाश काले जो विपरीत बुद्धि है वो यहाँ विजयंती गुरु से दिखाई गए। इसलिए शरीर चित्र भगवान का साफ लिखो नीचे की ओर क्या लिखो, विनाश काले विपरीत बुद्धि खराब हो गए विनश्यंती हुई, और ऊपर लिखना सब चाहिए विनाश काले विपरीत बुद्धि विजयंती हुई। तो 76 के बाद ये विजय को प्राप्त करने वाली आत्माएं यहाँ दिखाई गई है, तो जिनमें राम और राम के 4 भाई दिखाई गए। एक तरफ ये भाइयों का ग्रुप और दूसरी तरफ बहनों का ग्रुप दिखाई गया, एक तरफ है रुद्रमाला का ग्रुप और दूसरी तरफ है विजयमाला का ग्रुप। तो रुद्रमाला की मुखिया 4 आत्माएं दिखाई गई है, 4 धर्म के जो बीज है, यही ब्रह्मा के साथ 4 पुत्र बताए गए शास्त्रों में, जो मानसी पुत्र सबसे बड़े पुत्र बताए गए सनत सनातन संगम सनत कुमार। ये 4 आत्माएं 4 मुख्य धर्म है, देवता इस्लामी बौद्धि क्रिश्चियन, इन 4 धर्मों की बीज आत्मा यहाँ दिखाई है। उनमें देवता धर्म की बीज है राम वाली आत्मा, इस्लाम धर्म की बीज है भरत, बौद्ध धर्म का बीज है लक्ष्मण, और क्रिश्चियन धर्म का बीज है शत्रु। ये 4 धर्मों की 4 बीजों का आत्मा तो हो गई रुद्रमाला की, और 4 इनकी सहयोगी शक्तियाँ हो गई दूसरे जो सामने की ओर होती है, जिनमें से 3 दिखाई गई हैं, 1 नहीं दिखाई गई, बाकी उधर प्रमुख के साथ जो गोला चित्र दिया हुआ है चर्चा उसमें 4 ही दिखाई गई। तो कहने का मतलब 4 ये और 3 ये, 7 तो ये हो गए, दूसरे मम्मा बाबा हो गए, ये 9 हुए। एक इसलिए कम है कि जो चौथा है शत्रुघ्न, उसने परमात्मा का संगम बना बनाया घर गिराया होगा, तो इसलिए उसका घर जो है परमात्मा ने गिरा दिया। तीन दिखाए हैं, एक को नहीं दिखाया, तो 7 ये और 2 दो मम्मा बाबा। मम्मा के लिए तो बाबा ने कहा है कि ये अंत तक स्थापना के बारे में प्रस्तुत रहेगी, भले बाबा चला जाए। तो ये ही 9 रत्न है। वैसे अब तक ये दिन ये समझा जाता था कि जो 8 नारायण है वो 8 रत्न है, लेकिन 8 नारायण के साथ तो 8 नारायणियां भी लगी हुई है, तो 8 8 को 16 हो जाते, तो वो आपका नवरत्नों की गिनती नहीं है, क्योंकि वो तो नारायण कम तनाव वाले नारायण, कम जन्म लेने वाले नारायण, सातवां आठवां नारायण होगा वो तो कलाएं ही उसकी कम हो जाएंगी। तो जिनकी कम कलाएं है वो रत्न में कैसे आ सकते, रत्न तो न कम कला वाले होंगे न कम जन्म लेने वाले होंगे, वो तो पांच विधान और पूरे चौराठी जन्म लेने वाली आत्मा होगी, रूप आत्मा होती। नारायण वाली आत्मा तो आ रहा है मूर्त आत्मा है, जलों को दिखाई जाने वाली आत्मा, उन जलों के भी जो बीज हैं वो यहाँ दिखाई गए। तो ये जो दो ग्रुप दिखाए गए हैं उनमें एक ग्रुप है सूर्यवंशी, दूसरा ग्रुप है विजय माला का चंद्रवंशी। वंश की शुरुआत जरूर किसी व्यक्ति से होती है, उस व्यक्ति के नाम के आधार पर वंश का नाम पड़ता है, जैसे रघुवंश। तो यहाँ सूर्यवंश का नाम पड़ा है तो जरूर कोई सूर्य का पाठ बजाने वाला पाठधारी होना चाहिए, और चंद्रवंश नाम पड़ा है तो जरूर चंद्रमा ज्ञान चंद्रमा शिका शीतल पाठ बजाने वाला कोई पाठधारी व्यक्ति होना चाहिए। तो सूर्यवंश का सूर्य के रूप में ज्ञान सूर्य के रूप में पाठ बजाने वाला जो पाठधारी है वो ब्रह्मा का जब आए सौ साल पूरी हो, सौ साल पूरी हो जाती है छत्तर में, तो वही आत्मा जो आदि ब्रह्मा था वही ज्ञान सूर्य के रूप में उदय उदय हो जाता है। हम छत्तर से ज्ञान सूर्य प्रगटा और अज्ञान अंधेर, अज्ञान अंधेर विनाश, मुरलियों में जो जो बातें अज्ञानता के रूप में जिनका पूरा क्लैरिफिकेशन नहीं मिलता है उनका क्लैरिफिकेशन भी मिलना शुरू हो जाता है। तो संक्षेपकर के ज्ञान सूर्य की प्रकाश की शुरुआत, और उससे पहले ज्ञान चंद्रमा का प्रकाश चल रहा था, यदि ज्ञान चंद्रमा का प्रकाश तो होता है शीतल, तो शीतल ज्ञान के प्रकाश में कीड़े मकोड़े भी पलते रहते हैं, लेकिन सूर्य के प्रकाश में कीड़े मकोड़े जो है वो शीतल सूर्य की किरण होंगे तब तक तो चलेंगे, लेकिन सूर्य जैसे जैसे प्रखरता प्राप्त करता जाएगा वैसे वैसे कीड़े मकोड़े खुलास होते जाएंगे। तो ऐसे यहाँ भी संक्षेपकर से जब से एडवांस पार्टी का ज्ञान सूर्य के द्वारा ये पाठ शुरू होता है तो कुछ समय से बीज रूप आत्माओं का कार्यकाल शुरू होता है, और उसमें जो कीड़े मकोड़े जैसी आत्माएं हैं जो कि ज्ञान की रोशनी में रहना पसंद नहीं करते वो खिलाफ होते हैं, उनको कोई स्थान नहीं। तो ये सूर्यवंश जो दिखाया गया है ये है सूर्य परमात्मा के पार से डायरेक्ट जन्म लेने वाले व्यक्ति, और जो चंद्रवंश दिखाया गया है वो ज्ञान सूर्य से डायरेक्ट जन्म नहीं लेते बल्कि ज्ञान चंद्रमा से जन्म लेने वाली आत्मा, वो ज्ञान चंद्रमा के शासन काल में पलने वाली आत्मा है। ज्ञान चंद्रमा के द्वारा जो परंपरा स्थापन हुई है ब्राह्मण की उस परंपरा में पलने वाली आत्मा है, जैसे दीदी दादियाँ हैं उनके रहबरी में पलने वाली आत्मा वो है चंद्रवंश। तो ब्रह्मा बाबा ने जितने भी सेंटर स्थापन किए ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा, और उनके द्वारा जितने भी सेंटर स्थापन हुए उन सेंटर में पालना लेने वाली जो आत्माएं हैं वो ज्ञान चंद्रवंश की आत्मा है, लेकिन सूर्यवंशी आत्माएं वो है जो न तो ज्ञान चंद्रमा का आधार लेती है और न किसी व्यक्ति या गुरु का आधार लेती है, जबकि वो सिर्फ ज्ञान सूर्य परमात्मा शिव की मुर्गियों का आधार लेने वाली आत्मा वो जो है वो सूर्य दिखाई गई। मतलब ये है कि बाप का पाठ जो है वो तो गुप्त पाठ हो जाता है, तो बाप गुप्त हो जाता है और बच्चों को प्रकट करता है। तो ब्रह्मा की रात द्वापर कलयुग कही गई है उसमें ज्ञान सितारे प्रत्यक्ष होते हैं और परमात्मा को गुप्त होकर के पाठ बजाता है, इसलिए कहा। तो ये जो दो ग्रुप है सूर्यवंश चंद्रवंश, तो उनमें सूर्यवंश का प्रश्न और चंद्रवंश की प्रश्न, जो सूर्यवंश का दिखाया गया है उसके लिए कहा है कि प्रश्न जो है आठवां जन्म लिया कृष्ण ने, तो सत्य में तो आठ बच्चे पैदा होंगे नहीं, तो यहाँ संगम की बात है कि जब ये सात नारायण डिक्लेयर हो जाते हैं तो आठवां नंबर कृष्ण की आत्मा उन्होंने ब्रह्मा की सोल इस समय कौन से बच्चे में प्रवेश करके सारी बात कार्य कर रही है वो बात प्रत्यक्ष हो जाती है। आठवें नंबर पर कृष्ण की प्रत्यक्षता होती है, इसलिए शास्त्रों में कृष्ण को आठवें नंबर का बच्चे दिखा दिया। वो सात नारायण पहले प्रत्यक्ष होते हैं, वो यदि है तो वो पहले से ही है और उनके पार्ट भी प्रत्यक्ष होते हैं। आठवां नंबर कृष्ण का जन्म इस तरीके से वो दिखाए गए हैं, कृष्ण और कृष्ण के साथ और कथा वगैरह दिखाई जाती है। तो महाभारत के काल से भागवत के काल से कृष्ण कृष्ण की कथा, रामायण के काल से राम के चार भाई और शास्त्रों में दूसरे शास्त्रों के हिसाब से ब्रह्मा के चार पुत्र के रूप में दिखाई देते हैं। मेरी आत्मा जो है उनमें तीन जो दिव्यों की बीज दिखाई गई है पीछे राम के पीछे, राम तो देवी देवता सनातन धर्म का बीज हुआ, तो तीन जो दूसरे धर्म के बीज हैं वो आत्माएं जो है वो दूसरे धर्म के बीज होने के कारण डिस्ट्रक्टिव पार्ट बजाने वाली आत्मा। तो शुरुआत में सपुत्र राम स्टेज में तो परमात्मा बाप के सहयोगी है, लेकिन बाद में ये विरोधी पार्ट बजाने लग पड़ते हैं। तो विरोधी पार्ट बजाने के कारण ये आत्माएं जो है वो त्रेता के अंत में जाकर के और इनको पाप पत्रों में मिल जाएगी, बाकी शुरुआत में राजा ही प्राप्त नहीं कर सकती। जो आत्मा पहले बाप को पहचानती है, बाप के कारण मतदार बनती है, लेकिन फिर बाद में विरोधी बन जाती है, बेसर्व करने लग पड़ती है, तो उनका पाप पत्र छीन लिया जाता है। तो अंत में जाकर के राजमहसी अधिकारी बनती है। तो जैसे यहाँ आठ नारायण दिखाए गए हैं सचिव में, ये आठ नारायण त्रेता में जो कुछ बरकरार रहते हैं यही आठ नारायण त्रेता में जाकर सीता बनी, क्योंकि बाबा ने कहा जो लक्ष्मी नारायण बनते हैं वो राम सीता बना। तो जिस नंबर के सचिव में लक्ष्मी नारायण बनेंगे उसी नंबर के त्रेता में राम सीता बनेंगे, बाकी रह गई आठ तो सचिव के एक समय में था, तो नौ बदलिया तो सचिव वाली हो गई और तीन और रहने तो तीन में ये तीनों भाई जो है वो एडजस्ट कर दिए। इस तरीके से एंड में जाकर के इनका मतलब ये वहां भी जाकर के सड़क को नष्ट करने के निमित्त बने, क्योंकि
एंड में
परमात्मा के कार्य में इन्होंने विघ्न डाल करके जो स्वर्गीय संगठन पहले जब भी बनना चाहिए था उसमें इन्होंने विघ्न डाला और विघ्न डालने के कारण सारी देर में स्थगित हो जाता है, देर में बनता है, तो वो संगठन तैयार नहीं हो पाता। तो उसका इनको दंड ये मिलता है कि ये त्रेता के अंत में भी जाकर के विघटन के निमित्त बनते हैं, स्वर्ग के स्वर्ग स्थापन करने के निमित्त नहीं बन पाते।
ये तो सब स्थितियाँ बड़ी बताइए होती है, ये खाली बताइए
आखिरी तीन चूड़ियों के ये अधिष्ठापन
होते हैं
की स्वर्ग की दुनिया जो है इनके द्वारा नष्ट हो
जाएगी।
आगे ये दिखाया गया है कि जो कसिदी त्रेता युग की स्वर्ग की शूटिंग होती है वो तो वास्तव में होती है, परमात्मा निराकार जब साकार में प्रत्येक रूप में कार्य करता है तब स्वर्ग की शूटिंग होती है, और वही परमात्मा जब गुप्त हो जाता है तो देहधारी मनुष्यों के द्वारा नरक की शूटिंग होती है। यही हमारे यज्ञ में हुआ, जब तक मम्मा बाबा जीवित रहे तब तक यज्ञ के अंदर स्वर्ग की शूटिंग का कार्य सम्पन्न होता है, और जब से मम्मा बाबा ने शरीर छोड़ा और परमात्मा गुप्त हो गया ज्ञान सूरी, तो ज्ञान सूरी के गुप्त होने से यज्ञ के अंदर वो देहधारी धर्म गुरु जो है जो की झार के चित्र में बताए लेफ्टिस्ट रावण संप्रदाय, वो जो है वो अपनी बंधन की जंजीरें जो है वो सारे ब्राह्मण परिवार में फैला देते हैं और सारे ब्राह्मण परिवार को अपने तरीके से कंट्रोल कर लेते हैं। तो वही ब्राह्मण आत्मा है यहाँ जो है वो रावण राज्य में आकर के भक्ति मार्गी रावण संप्रदाय की सारी परंपराओं को अपनाने लगती है, उनकी सूची मानने लगती है, कराने वाले हैं वो देहधारी धर्म गुरु, उसका एक एक प्रूफ इस चित्र में दिया गया है। पहला प्रूफ है कि जब स्वर्ग समाप्त होता है त्रेता का अंत होता है तो द्वापर युग की शुरुआत में रावण राज्य के एकदम आरंभ में पहली निशानी आती है कि जो महल माणिया है देवताओं के संगठन वो समा जाते हैं जमीन और आधा विनाश हो जाता है त्रेता के अंत में, व्यक्ति का आधा विनाश होता है क्योंकि रावण राज्य उस समय शुरू होता है, विकारी प्रवृत्ति का रावण राज्य शुरू होने से देवताएं बाम मार्ग में जाते हैं, इसलिए स्वर्ग जो है वो नष्ट हो जाता है, आधा विनाश होता है। पूरी सृष्टि का विनाश नहीं होता,
आधा सर्व का विनाश,
आधा विनाश होता है, यानी भूकंप आता है और जमीन के हिलने से वो मैल वाणिया जो है वो वो समा जाती है। इसका यहाँ शूटिंग क्या होती है, जैसे ही मम्मा बाबा ने शरीर छोड़ा तो परमात्मा गुप्त हो गया, उनका रथ ही समाप्त हो गया, तो परमात्मा गुप्त हुआ और परमात्मा के गुप्त होने से क्या है, इन देहधारी धर्म गुरुओं का शासन शुरू होता है और जब रावण का राज्य शुरू होता है तो विकारी वृत्तियाँ यज्ञ के अंदर आरंभ हो जाती है, क्योंकि ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के बाद ब्रह्मा बाबा तो पुरुषपन है, पुरुषपन तो होते ही है, दुर्योधन दुशासन उनको कंट्रोल करने वाला कोई ऐसी शक्ति नहीं रही, और जिसने कंट्रोल किया वो कोई आसुरी शक्ति कुर्सी पर आ गई और जिसके कारण ब्रह्मा बाबा का चित्त दुलायमान हो गया। और बाबा ने वाणी में ये कहा हुआ है कि राजाएं जब शूद्र बने तो शूद्र ही मंदिर बनाते हैं, भिखारी राजाएं जो है वो मंदिर बनाते हैं, तो यहाँ पर ऐसा ही है। उससे पहले बाबा ने कभी किसी सेवा केंद्र की स्थापना नहीं की, जो भाई बहने आए तो उन्होंने उनको बहने दे दी सेवा केंद्र स्थापन करने के लिए, लेकिन सब सेवा केंद्रों की स्थापना का कार्यभार जो है दूसरे भाई बहनों ने संभाला, बाबा ने कोई सेवा केंद्र स्थापन कोई मंदिर स्थापना नहीं की। लेकिन जब मम्मा ने शरीर छोड़ दिया 66 में, तो ठीक एक साल के बाद 66 में ब्रह्मा बाबा के द्वारा वो सोमनाथ मंदिर की स्थापना सागर के कंठे पर, ज्ञान सागर का स्थान हुआ मधुबन और मधुबन का किनारा हुआ अहमदाबाद, तो अहमदाबाद में वो सेवा केंद्र खोल दिया। तो ये हुआ दूसरा प्रूफ रावण राज्य की शुरुआत का, मंदिर बनाना शुरू होते हैं रावण राज्य में द्वापर। पहला प्रूफ हुआ भूकंप, भूकंप में ये हुआ कि मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद जो मम्मा के प्यार में चलने वाली कन्या माताएं थी धरणी वो हिल गई, और इनके हिलने से उनके आधार पर चलने वाली विद्या को टूट पड़ी। ऐसे ही ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद जो ब्रह्मा बाबा के प्यार में चलने वाली आत्माएं थी वो कन्याएं माताएं हिल गई और वो टूट पड़ी, और उनके आधार पर चलने वाले भाई लोग भी टूट पड़े। इस तरह एक बड़ा विनाश हो गया, ये आधा विनाश हो गया। दूसरा प्रूफ ये हुआ, तीसरा प्रूफ रावण राज्य का ये है कि 200-300 वर्षों तक द्वापर युग में पहले पहले चित्र तैयार होते रहते हैं, धीरे धीरे चित्र बनाए जाते हैं। कैश के आने के समय जब कैश आया तो आज से 2000 साल पहले अजंता एलोरा एलिफेंटा की गुफाओं में ढेर से ढेर चित्र तैयार हुए आखिरी वक्त तक, यही हमारी युग में। मम्मा अगर जीवित होती तो ढेर ढेर चित्र नहीं बनवाने देती, वो तो 4 चित्रों पर नियुक्ति आस्था थी, लेकिन मम्मा जो ज्ञान की देवी थी वो तो ले चली। ब्रह्मा बाबा को उतना ज्ञान की गहराइयों का पता था नहीं, उनके तो अंदर से बाबा बोलता था इसलिए वो ज्ञान बोलते थे। तो जो देहधारी गुरु थे उस माया रूपी रावण ने मत दी किसी व्यक्ति को कि अब तुम ढेर ढेर और चित्र बनाओ ताकि तुम्हारा मान मरतबा तुम्हारी आवाज हमारा बन। तो उन्होंने ढेर के ढेर चित्र जो है वो बम्बई साइड में महाराष्ट्र साइड में जैसे अजंता एलोरा और एलिफेंटा की दुकान 2000 साल पहले तैयार हुई, वैसे ही महाराष्ट्र साइड में बम्बई में ढेर के ढेर चित्र सैकड़ों की तादाद में उन्होंने तैयार करा। ये हुई रावण राज्य की तीसरी मंडल। राम राज्य ने ऐसे ढेर के ढेर चित्र बनाने की दरकार, वहां तो गिने चुने 4 चित्र हैं, वह लक्ष्मी नारायण राम सीता, इन 4 चित्रों के आधार पर ही सारा वहाँ ठाट चलता है। और यहाँ ढेर ढेर चित्र तैयार हो गए। अच्छा, उसके बाद 300-400 वर्षों के बाद यानी 66-67-68-69 इसको तो चित्र बनते रहे, 69 से 70-71 इन 3-4 वर्षों में फिर शास्त्र बनकर के तैयार हुए, ये भी रावण की मत पर तैयार होते। बाबा ने कोई डायरेक्शन नहीं दिया कि शास्त्र छपाओ शास्त्र बनाओ, उन शास्त्रों में मुख्य शास्त्र है गीता। गीता में सबसे बड़ी भूल क्या कर दी,
बच्चे का नाम डाल दिया,
बाकी जगह बच्चे का नाम डाल दिया, रचय का भी जगह रचना का नाम डाल दिया, ऐसे ही है तुम्हें जो हमारी गीता मुरलियाँ हैं उन मुरलियों पिता का भी नाम डाल दिया गया, पिता की नाम ब्रह्मा का, ब्रह्मा तो रचना है। बाबा के समय की जो मुरलियाँ थी उनमें नाम लिखा हुआ है किसी का नहीं, शिव बाबा याद है ये लिखा हुआ
है।
अब जब से मम्मा ने शरीर छोड़ा तब से मौका लगते ही देहधारी धर्म गुरुओं ने बाबा की नजर बचा करके और शिव बाबा याद है से पहले पिताश्री हो गए, पिताश्री शिव बाबा यानी पिताश्री शिव बाबा हो गया। तो परमात्मा की जगह उन्होंने पिताश्री का नाम डाल दिया। पिताश्री का नाम डालने से क्या हुआ कि वो ब्रह्मा की सारी वाणी हो गई, तो ये बड़ी भारी भूल हो गई, बाप की जगह बच्चे का नाम डाल दिया। तो ऐसे ही और शास्त्र बने, जैसे श्रीमद भगवत गीता एक बने, दूसरा शास्त्र बना भागवत, श्रीमद भागवत, ऐसे ही भक्ति मार्ग में जो भागवत बनी है तो उसमें एक अध्याय है 16,000 गोपियों की भगवानी कथा, जो बहुत इंटरेस्टेड है उसी के आधार पर उसका नाम रख दिया भागवत कथा। ऐसे हमारे यज्ञ के अंदर इंद्रियधारी गुरुओं के द्वारा एक पुस्तक छपाई गई और एक अद्भुत जीवन कहानी, वो अद्भुत जीवन कहानी में जो कन्याओं माताओं को भगाने का अद्भुत कर्म किया गया है वो वास्तव में प्रजापिता की कहानी है। समझे, मुरली में भी बाबा ने वो वाक्य बोला हुआ है के गोपियों को भगाया, ये किया, ये सब है वास्तव में प्रजापिता की कहानी, लेकिन नाम डाल दिया है कृष्ण की नात्मा का। ऐसे यहाँ भी यज्ञ के अंदर नाम डाल दिया ब्रह्मा का और फोटो भी डाल दिया ब्रह्मा का, जो अभी जीवन कहानी किताब लिखी गई है उसमें ब्रह्मा का फोटो है, उसमें नीचे लिखा पिता की। तो पढ़ने वाले की बुद्धि भी ऊपर छाप ये पड़ेगी कि इसके पुस्तक के अंदर जितने भी सत्य किए हैं है वो भगवान के सारे कृत्य सारे चमत्कार जो है इस व्यक्ति ने किए, जबकि ऐसे ही और शास्त्र लिखे हुए हैं, जैसे भविष्य पुराण भक्ति मार्ग में लिखा गया उसमें सब कपूर कल्पित राजाओं के नाम दे दिए गए और वो सब झूठे का भी। ऐसे ही यहाँ भी यज्ञ के अंदर पुस्तक लिखी गई विश्व का भविष्य, उस विश्व के भविष्य में विश्व के भविष्य के बारे में तो कोई निर्णय नहीं, कृष्ण का जन्म कब होगा, पुरानी दुनिया का विनाश कब तक होगा, नई दुनिया की स्थापना कब तक होगी, ये सारी बातें का क्लैरिफिकेशन कुछ भी नहीं। दुनिया की बातें सन 76 के विनाश की बात की वो भी झूठी साबित होगी। इसका मतलब ये हुआ कि वो विश्व का भविष्य वास्तव में भक्ति मार्ग की तरह एक पैसे कमाने का साधन बना लिया गया। ऐसे ही यहाँ और पुस्तकें लिखी गई भक्ति मार्ग में, जैसे योग वाचिष्ठ लिखा गया मोटा मोटा दो वालियों में, उसमें राम को वशिष्ठ जी ने शिक्षाएं दी हैं और दुनिया भर की कथा कहानियां समझा सुनाई समझाई, नाम रख दिया योग। ऐसे ही अपने यज्ञ के अंदर एक मोटी की पुस्तक छपाई गई है योग की विधि और सिद्धि, उस मोटी की पुस्तक को पढ़ करके आत्मा जो है विस्तार में जाएगी या सार बिंदु में टिकेगी, विस्तार में चली जाएगी। तो इतनी मोटी पुस्तक को पढ़ने वाला विस्तार में जाएगा बिंदु में जाएगा। ऐसे ऐसे लिटरेचर इन लोगों ने छपाए, जैसे वहाँ योग वशिष्ठ का नाम रख दिया और है दुनिया भर की कथा कहानी, ऐसे ही इन्होंने योग की विधि और सिद्धि नाम रख दिया और उसमें कहीं पतंजलि योग दर्शन की बातें, कहीं कपिल मुनि के दर्शन की बातें, कहीं दुनियावी जो योगी है उनकी बातें और कहीं थोड़ी बहुत मुर्गियों की योग की बातों को उसमें ऐड कर दिया गया। मतलब खिचड़ा इकट्ठा करके पैसे कमाने का साधन और नाम कमाने का साधन बना करके उसे काम में लाया गया। तो ये भक्ति मार्ग की राणा राज्य के गुरुओं ने ये सारे शास्त्रों का शूटिंग का आडम्बर बढ़ा दिया। ऐसे यहाँ आगे चल करके दिखाया गया है शास्त्रों के आधार पर फिर बड़े बड़े मंदिर बनाए गए भक्ति मार्ग, और उन बड़े बड़े मंदिरों में पहले तो एक आदि विचारी परमात्मा की यादगार शिव की पूजा होती, बाद में उन मंदिरों को बनाकर उन्होंने देवधारी देवताओं को चित्रित कर दिया, मूर्तियां बना दी और उनकी देवचारी पूजा होने लगी। ऐसे ही यज्ञ के अंदर जब तक मम्मा जीवित रही बाबा जीवित रहे तब तक क्लास रूम के अंदर सिर्फ शिव का फोटो लगाया जाता था, लेकिन जैसे ही मम्मा बाबा ने शरीर छोड़ा वैसे ही उनके पुजारियों ने देहधारियों के पुजारियों ने क्या किया मम्मा बाबा के चित्र लगा दिए। तो भक्ति मार्ग की रावण राज्य की देवचारी सूचन की शुरुआत हो गई। ये मम्मा बाबा की उपासना करने वाली जो प्रवृत्ति मार्ग की उपासना है वो यहाँ दिखाई गई है, कि जो उपासना करने वाले हैं वो भी प्रवृत्ति मार्ग वाले उनको जिम्मेवारी का ताज दिखाया गया, लेकिन आगे चल करके जब और तमो प्रधानता बढ़ी तो जो प्रवृत्ति मार्ग की उपासना थी उसका भी खंडन कर दिया गया। और ही ज्यादा विकारी बनने से क्या हुआ कि जो पितृ वर्ग है उसने कति की पूजा विशेष करना शुरू कर दी। काम वासना तो सबके अंदर समाई हुई है, तो स्त्री को पुरुष का अच्छा लगता है। उन्होंने अकेले कति की सिंगल कति की पूजा शुरू की और पुरुषों ने अकेली देवी की पूजा अपनी वासना की पूर्ति करने के लिए शुरू कर दी। पूजा में भी इस तरह का विचार ऐसी जो पूजा है समय प्रधान उसमें जैसे बात आती है इसका भी कि सिंगल की पूजा की देवी देवता है तो प्रवृत्ति मार्ग वाले थे परमात्मा जो प्रवृत्ति मार्ग स्थापना है सिंगल की पूजा क्यों करती थी जैसे कहता बराधा क्यों नहीं। तो वो यहाँ दिखाया गया है कि यहाँ रावण की वृत्ति क्या होती है, रावण सिंगल देखना चाहता है, अकेला करेगा तो उसका काम बनेगा और दोनों साथ होंगे तो उसका काम बनने वाला नहीं है। उसके लिए वो चार बार
उनके ऊपर तो काम दिखाया
है, यहाँ अंतर दिखाया गया कि सिंगल पूजा जो करने वाले हैं वो जिम्मेवारी का ताज उनको नहीं
पता होगा।
मतलब ये है वो स्वर्ग की पवित्रता की जिम्मेवारी का ताज धारण न करने वाली आपने, क्यों? क्योंकि जो रावण होगा राम को अकेला करेगा सीता को अकेला करेगा तो इसकी इसका मतलब इसकी नियत खोटी है ना। नियत खोटी होने के कारण वो तो वैसा लगाना चाहता है, वो पवित्रता का स्वर्ग स्थापन करना चाहता है। तो ऐसी आत्मा को जिम्मेवारी का ताज नहीं धारण किया गया दिखाया गया है। और जो स्वर्ग की जिम्मेवारी का ताज धारण नहीं करती वो आत्माएं फिर द्वापर कलयुग में भी आकर के ताजधारी राजाएं नहीं हो सकती, उनको ताज दिखा
ताजी।
यहाँ फिर प्रवृत्ति मार्ग की उपासना दिखाई थी लेकिन अंतर क्या है, यहाँ है सोलह कला संपूर्ण की उपासना और ये कम तनाव वाले चौदह कला वाले कम तनाव वाले की उपासना। तो कम तनाव वाले कोई राम सीता ही नहीं है, ये जितने भी नारायण है बाद वाले दूसरे नारायण से सब कम तनाव वाले सब फेलियर सब चंद्रवंशी। तो वो सब चंद्रवंशी नारायण जो है कम तनाव वाले फेलियर नारायण वो यहाँ दिखाए गए लेकिन है प्रवृत्ति मार्ग वाले। तो प्रवृत्ति मार्ग वालों की उपासना करने वाले के लिए उनको ताज दिया हुआ। आगे क्या दिखाया गया कम तनाव वाले देवता तो हैं कम से कम। आगे जब कलयुग की शुरुआत हुई तो कलयुग की शूटिंग होते होते जो जानवर जैसे स्वभाव वाले मनुष्य हैं ये भी कह रहे हैं उनकी भी पूजा होने लगी, उनको भी मंदिर में आश्रम में स्थान बना करके भगवान की तरह उनकी पूजा और उनकी सेवा को लोग फॉलो करने लगे। जैसे हनुमान की दिखाई दी, हनुमान का काम क्या है, हनुमान का काम है रावण की लंका में आग लगा पाए थे पूछ के उनकी जानवर की निशानी कमर में दिखाई जाती है, यानी कमर में जिनके काम विकार की निशानी दिखाई गई है वो काम विकार की निशानी वाली आत्मा प्रत्यक्ष है। दीदी राजियों का गांव को सबको नजर आती है जहाँ उनमें काम विकार पूछ के भरा हुआ और उन्होंने यज्ञ के अंदर डिस्टर्बेंस की है, आग लगाने का काम किया है, सेंटर के सेंटर उखाड़ दिए क्योंकि यज्ञ के अंदर सबसे बड़ा विघ्न आता है काम विकार। लेकिन ऐसी आत्मा को भी मंदिर स्थापन करके आश्रम बना करके उसमें मुखिया बना करके बैठा दिया। ऐसे गणेश जी, गणेश जी को है काम विकार की निशानी पूछ तो उतनी लंबी नहीं दिखाई जाती आती, लेकिन मुख में हृदय अभिमान बहुत भरा हुआ उनका शरीर जो है लंबा थोड़ा दिखाई जाता है तो शरीर का बड़ा दिखाने का मतलब हृदय अभिमान है बहुत, आंखों में जैसे कि मत भरा हुआ है हृदय अभिमान का, बहुत बड़े बड़े यानी ज्ञान बहुत सुनते हैं, ज्ञान सुनने सुनाने का माता तुम्हें बहुत है, माथा भी चौड़ा है अकल भी तीखी है लेकिन बे अभिमान के बाद क्लास में कोई बातें होंगी तो कोई ना कोई बात की ऐसी सुन रही है सुनो जिसके बारे में दूसरी को बेकारी बन गया मुक्त जरूर ऐसे लेकिन बोलेंगे कोई ना कोई ऐसी आँख जरूर लड़ाएंगे जिस आँख लड़ाने से बारे में मन खराब हो जाए दूसरे की व्यक्ति खराब हो जाए। इस तरह की देह अभिमानी जो सुन वाली आत्मा है जिनके मुख में देह अभिमान कमर में भाई ये जानवर है तो जानवरों की जो पूजा करने वाले हैं वो तो एकदम माथा मराने वाले भगत है उनका तो माया ही माथा मोड़ने की माया ने माथा मोड़ा हुआ है सब तो ऐसे जानवरों की पूजा करते हैं। जानवरों की पूजा करने का मतलब क्या अपने हम बेटी देते हैं उसको मान्य मानते हैं, मान्य पक्ष होता है उसकी हम पूजा करते हैं, मान्य मानते हैं उसको, इस तरीके से आचरण करते हैं, हाँ सम्मान देते हैं। यहाँ जो है ये जानवरों की पूजा करते हैं, इसका मतलब अपनी बहनें और बेटियाँ ऐसा को दे देते हैं, ऐसा उसको सुपुर्द भी हम छोड़ देते हैं। तो पूजा करना हुआ ना, माथा टेकना हुआ ना, तो ऐसे भी जो माथा टेकने वाले वो क्या स्वर्ग स्थापन करेंगे? ये जानवर ये स्वर्ग स्थापन करेंगे, ये तो स्वर्ग को उखाड़ गया। इस तरीके से दिखाया गया जानवरों की पूजा के लिए भक्ति मारे लेने के लिए। लेकिन रावण राज्य में रावण संप्रदाय के जो गुरु हैं यही सारा कृषि कराते हैं, क्योंकि इनकी नजरों में अच्छी तरह से है कि हाँ ये जानवर है, किताब विताब की पूछ है, जान भी लेते हैं, नया जंगल जैसा कंटर का कंटर उखाड़ने वाले हैं ये। लेकिन उनके पास लोट है ना, तो वो लोट का लालच दिखाते हैं, तो मुसलमान गवर्नमेंट बैठी हुई है एसी के अंदर, तो लालच में आ जाती है। वो कहते हैं कि अगर ये हमको हेड बनाओ तो हम इतना लोट दे सकते हैं।
पूछ से आग लगाने वाले जो बिल्कुल बड़े बड़े महारथियों को प्रत्यक्ष है, ऐसे जानवर इसकी पूछ जिनकी बिल्कुल प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रही है, ऐसों को भी ले जा करके उन्होंने मंदिर रूपी आश्रमों में भगवान बना करके उनको बैठा दिया, और उनके डायरेक्शन को लोग ऐसे फॉलो करते हैं जैसे भगवान की श्रीमत, ऐसे उनकी पूजा करते हैं जैसे भगवान का भगवान की पूजा होती है, ऐसे उनके ऊपर फूल चढ़ाते हैं जैसे भगवान के ऊपर फूल चढ़ाए जाते हैं। आगे दिखाया गया है गणेश की पूजा, ये गणेश की पूजा ये साबित करती है कि उनको काम विकार की पूंछ तो उतनी लंबी चौड़ी नहीं है, लेकिन जय अभिमान का सूर जो है वो उनके मुख में बहुत लंबी चौड़ी लटक रही है। गणेश वही है जिनके आंखों में मद भरा हुआ है, आंखें चंचल है, आंखों से विकर्म बहुत करते हैं, वाचा से उनकी मुख से ऐसी ऐसी बातें निकलती है जो वायुमंडल को खराब करने वाली होती है, ज्ञान को बहुत सुनने सुनाने वाले हैं, यानी कान उनके बहुत बड़े हैं, माथा भी बहुत चौड़ा दिखाया जाता है, यानी बुद्धिमान भी बहुत है, लेकिन देह अभिमान की सूर बहुत बड़ी है, और वो देह अभिमान की सूर उनकी प्रत्यक्ष सबको दिखाई भी पड़ती है, फिर भी ऐसे जानवर को मंदिर में स्थापन करके और वो पूजा लेने देने का काम किया जा रहा है। आगे दिखाया गया है मनुष्य मनुष्य की पूजा, हर सेंटर में ऐसे जिज्ञासु ऐसे गुरु जरूर देखने को मिलेंगे। गुरु यहाँ दिखाए गए हैं नीचे से लेकर ऊपर तक रंगे, फिर उनकी प्रत्यक्ष सबको दिखाई भी पड़ती है, फिर भी ऐसे जानवर को मंदिर में स्थापन करके और वो पूजा लेने देने का काम किया जा रहा है। आगे दिखाया गया है मनुष्य मनुष्य की पूजा, हर सेंटर में ऐसे जिज्ञासु ऐसे गुरु जरूर देखने को मिलेंगे। गुरु यहाँ दिखाए गए हैं नीचे से लेकर ऊपर तक रंगे, ऊपर कम रंगे हुए हैं, नीचे से ज्यादा रंगे हुए हैं, क्या उनकी कर्मेंद्रियाँ जो है वो नीचे से ज्यादा ही रंगी हुई है, लेकिन फिर भी वो ज्ञान सुनाने में ऐसे कटु हैं कि किसी पकड़ मुंडे को पकड़ करके एकदम सफेद कपड़ा पहना देंगे, सफेद कपड़ा भी पहना देंगे और ऐसा ब्रह्मा कुमार बनाएंगे जो हाथ जोड़ करके माथा झुका करके गुरु जी के सामने लत वक्त हो जाए, ऐसा ब्रह्मा कुमार बना देंगे। वो ब्रह्मा कुमार ऐसा होगा जो बाबा की मुरली को सुने न सुने, बाबा की बात को माने न माने, क्लास टीचर की बात को माने न माने, सुने न सुने, लेकिन वो अपने गुरु की बात को जरूर माने। जब तक उसको गुरु ज्ञान में चलेंगे तब तक वो ज्ञान में चलेगा, जिस दिन गुरु ज्ञान में से टूट जाएंगे वो भी ज्ञान में टूटेगा। ऐसे चेहरे गुरु हर आश्रम में देखने को मिल सकते, ऐसे गुरु जी को कोई संदली नहीं मिलती है अपना भाषण करने के लिए, है तो वो जिज्ञासु की ही कैटेगरी दे बैठते हैं विद्यार्थी हैं, लेकिन वो है अच्छे खासे गुरु जो है कि ब्रह्मा कुमार बनाने में बड़े कटे सफे को ब्रह्मा कुमार सच बना देंगे, खुद का चाहे रंगीन कपड़े पहनते हैं लेकिन ब्रह्मा कुमार ऐसा तैयार करेंगे उनका जिनकी तक एकदम टाइट सफेद को बढ़िया
नंद ब्रह्मा कुला क्या दिखाया गया है। ये गुरु पूजा मंत्र मंत्र की पूजा जब ज्यादा करती है तो रूप धारण करती है पांच तत्वों की पूजा, कहीं अग्नि की पूजा दिखाई गई है, कहीं वृक्ष की यानी मिट्टी की पूजा है, कहीं जल की पूजा है, कहीं वायु की पूजा है, तो इस तरह पांच तत्वों की पूजा ये है पांच भूतों की उपासना। पांच भूतों की जो पूजा है उसका उत्कृष्ट नमूना है देह की पूजा। ये देह की पूजा जो है वो जिस आसन में सिर्फ ब्रह्मकुमारी विश्वविद्यालय की बात नहीं, जिस संस्था में इस देह पूजा ने रूप पकड़ा है दैहिक पूजा का, तो उसका रिजल्ट ये हुआ क्या पांच तत्वों के शरीर की पूजा। पांच तत्वों के शरीर की पूजा कैसी, किसी व्यक्ति विशेष की पूजा, व्यक्ति विशेष की सेवा करना यह है देह की पूजा। नहीं, किसी व्यक्ति विशेष की विशेष सेवा करना, हाथ उसके बर्दारी करना, सबको आत्मिक दृष्टि से न देखना। जैसे मान लो क्लास लगा और क्लास में सब लोग टोली बांटी गई, टोली बांटी गई, टोली बांटने के बाद जो बर्तन इकट्ठे हुए उन बर्तनों को अगर कोई विद्यार्थी सब बर्तनों को धोने के लिए बैठ जाए तो वो तो यही की सेवा हुई। लेकिन कोई एक के गुरु एक खास भाई या बहन के तो बर्तन साफ कर दे और बाकी दूसरों को साफ करने से एक बार कर दे तो ये क्या हुई, ये पांच तत्वों की खास पूजा हो गई। हाँ, कोई पांच तत्वधारी विशेष मनुष्य है ये पांच तत्वों के शरीर की पूजा हो गई। ये पांच तत्वों की विशेष पूजा जो है जिस आश्रम में शुरू होती है तो उसमें उसका रिजल्ट ये निकलता है, खास करके जब पुरुषों की सेवा होती है। और ब्रह्मकुमारी आश्रम में तो ऐसे बहुत से पुरुष सरेंडर कर दिए गए श्रीमती दर्शिला, क्योंकि बाबा ने मुरली में किसी ने नहीं कहा क्या कि पुरुषों को गौशाला में रख दिया जाए। अरे कृष्ण है तो कृष्ण गोपाल बनेगा कि बैलों को पालेगा, बैलों को बैल को और तो पुरुष जो है वो और पत्नी की सुरक्षा करें, धन कमा कमा करके उनको और दें, न कि और वहाँ बैठ करके खाएं। तो इस तरह की जो देह पूजा यहाँ हुई शुरुआत, ये देह पूजा की शुरुआत का रिजल्ट ये हुआ। क्या रिजल्ट दिखाया गया कि ब्रह्मा कुमार जी महाराज सफेद को सीढ़ी से लेकर के चोटी तक खड़े हुए हैं, परम प्रसिद्ध ब्रह्मा कुमार जी उस समय के, हाँ जिस समय के चित्र बने हुए उनके हाथ में काम कटारी दिखाई गई। काम कटारी माने नयन कटारी, कोई काम कटारी कहा जाता है। बाबा ने किसी मुरली में नहीं कहा कन्या माता है पुरुषों को बैठ करके दृष्टि दे या पुरुष बैठ करके कन्या माताओं को दृष्टि दे। इस भारत में ये परंपरा थी कि पर पुरुष के सामने स्त्री और कन्या जो है आँख उठा करके नहीं देखती थी। उसी भारत में इन देहधारी धर्मगुरुओं ने रावण संप्रदाय वालों ने कौन सी परंपरा ज्ञान के नाम पर शुरू कर दी कि पुरुष जो है वो स्त्री को और स्त्री जो है जात जाति के पुरुषों को दृष्टि का लेन देन कर रहे। अरे आंख भी तो एक इंद्रिय है, इस इंद्रिय का अनेकों के साथ लेन देन करना क्या ये बेविचार नहीं हो गया। और इंद्रियां इतना धोखा नहीं देती, आंख तो सबसे जास्ती धोखा देने वाली, जो सबसे जास्ती धोखा देने वाला अंग है उसी का हम संग दूसरों के साथ करेंगे और वो भी कोमल कन्याओं का, तो रिजल्ट क्या होगा, बेविचार और भ्रष्टाचार और ज्यादा बढ़ेगा, उसे तो रोक नहीं सकता, बजाय कर्ज स्थापन होने के और ही नरक स्थापन होगा। तो वही है कि अंदर ये नरक स्थापन होगा, सेवा केंद्रों में और ज्यादा झगड़े चल रहे हैं। झगड़े कब चलते हैं, जितना काम विकार बढ़ता जाएगा उतने झगड़े चलते बढ़ते जाए। उसके पाँव के पाँव को दबोच रखा है, हाँ उसे दुर्योधन दुशासन ने अपने बुद्धरूपी पाँव से उसके बुद्धरूपी पाँव को दबोच रखा माने हावी हो गया, हाँ कब्जे में कर लिया, और हाथ में काम कटारी पकड़ ली माने नैन कटारी से उसको मार रहा है लगातार। भाई पुरुष की इंद्रियां तो होती है प्रबल और कन्या माताओं की इंद्रियां होती है कोमल, तो कोमलता जब प्रबलता जो है वो कोमलता को आक्रमण करेगी तो वो तो आधीन हो जाएगी। हाँ तो यहाँ लिखा हुआ है हाय स्वभाव बेटा, यानी उनमें अबला की जाति में इतनी शक्ति नहीं होती है वो पुरुष का मुकाबला करे, उसके अंदर खुद ही कमजोरी आ जाती है समझे उनको, तो ये अंदर से आवाज निकल रही है हाय स्वभाव, हम तो यहाँ पवित्र रहने के लिए अर्पण हुए थे और यहाँ तो हमारी पवित्रता पर ही भाव होने लगा, तो अंदर से जो आवाज निकलती है हाय स्वभाव बचाओ, हमको भी ये व्याख्या बना रहा है हम तो तुम्हारी शक्ति जिनकी शक्ति नहीं रही है, तो अंदर से जो ये आवाज निकलती है वो आवाज किसी ब्रह्मा कुमारी की ही है दिखाई गई है। कोई दुनियावी व्यक्ति जो है उसे ना सकता है, दुनियावी स्त्री जो है वो शिव बाबा शब्द का उच्चारण नहीं करेगी, उसके वस्त्र मैले दिखाए गए। उसका मतलब क्या हुआ, ये जो मैले वस्त्र दिखाए गए हैं है तो सफेद साड़ी लेकिन उसको गंदा कर दिया है उस दुर्शासन,
तो सफेद साड़ी को गंदा दिखाने के लिए, मटमैला दिखाने के लिए ऐसा रंग कर दिया गया, तो शरीर रूपी वस्त्र उसका गंदा हो चुका। ये व्यक्ति जो है ये के अंदर, उसका मूल कारण क्या हुआ? उसका मूल कारण यह हुआ कि सेंटर के अंदर जो पुरुष घुसे हुए हैं सरेंडर करके, उनके द्वारा ये सारा घोटाला हुआ। अगर उन पुरुषों को सरेंडर न किया जाता तो ये घोटाला नहीं होता। बाबा ने कभी ऑर्डर भी नहीं दिया है मुरली तो पुरुषों को सरेंडर करने की जरूरत है? अरे पुरुष तो दुनिया में चाहे जहाँ भी अपना कमाएंगे खाएंगे, उनकी सुरक्षा की क्या जरूरत है? कन्या माताओं के ऊपर पवित्रता का वो हो सकता है, अगर पवित्रता के लिए उनको रक्षा की आवश्यकता पड़ सकती है तो वो आकर के यज्ञ शरण ले सकती है। आगे यहाँ दिखाया गया है
देखिए।
बात है, हमारे यह भी कहकर की बात है। अभी कुछ हुआ है ऐसी गई पूजा और दूसरी का दूसरी का छुट्टी और भविष्य में आप इसी गलती के लिए जो छुट्टी होने लगी
के रूप में
पकड़ ली तो लीजिए एक बार उसका बता रहा हूँ
ब्रह्मा की कौन
के लिए नजारा खुला था।